नमस्कार मित्रों, अब समय आ गया है कुछ संस्कृत पढ़ने का, तो कहो पठामि संस्कृतम। लेकिन हाँ, इससे पहले हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लो ताकि तुम अपने विचार हमें SMS से या वॉइस मेल से भेज सको। ये नंबर है 09414151415, अर्थात 09414151415। मित्रों, पीछे मैंने कहा था कि मैं बहुत सारे बहुव्रीही शब्दों को लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित होंगी, तो आज का हमारा कार्यक्रम भी रहेगा बहुव्रीही समास के ऊपर। मित्रों, कई बार उपसर्ग लगा करके अच्छे खासे बहुव्रीही समास के शब्द बन जाते हैं। जैसे हम अगर पीछे स लगा दें तो स का अर्थ होता है साथ, तो एक शब्द बना स लक्ष्मणः, अर्थात लक्ष्मण के साथ। लेकिन हम ये जानते हैं कि लक्ष्मण के साथ राम होते हैं, तो जब हम कहते हैं कि जो लक्ष्मण के साथ है वह राम, तो राम के अर्थ में जब हम स लक्ष्मणः शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह शब्द बन जाता है बहुव्रीही समास। इसी प्रकार आजानुबाहु, अर्थात जिनकी बाहें इतनी लंबी हैं कि वो घुटनों तक आती हैं, घुटनों को छू सकती हैं, तो यहाँ फिर से बहुव्रीही समास बन गया। अजात शत्रु, अर्थात जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा हो, जिसकी सबसे मित्रता हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे अजात शत्रु, ये फिर बहुव्रीही समास बन गया। तो मित्रों, वैसे तो बहुव्रीही समास के कई भेद हैं जो कि व्याकरण के हिसाब से बनाए गए हैं, और इनके लिए अगर तुम्हें विस्तार से पढ़ना हो तो मैंने देखा कि इंटरनेट पर तुम्हें काफ़ी पढ़ाई का सामान मिल जाएगा। लेकिन एक बहुत ही सुंदर पाठ जो कि श्यामचंदन मिश्र द्वारा तैयार किया गया है, इसे तुम YouTube पर देख सकते हो। दूसरा, एक सारे ही समासों को अत्यंत विस्तृत रूप में पढ़ाने वाला पाठ जो है वह एक बहुत ही अच्छे ज्ञान स्थल पर, अर्थात वेबसाइट पर बना हुआ है, उसका नाम है संस्कृत जगत। तो अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है और संस्कृत व्याकरण को बहुत विस्तार से पढ़ने की इच्छा है तो ये दोनों स्थल तुम देख सकते हो विस्तार से पढ़ने के लिए। लेकिन मैं यहाँ भाषा के लालित्य के हिसाब से इस बहुव्रीही समास का बखान कर रही हूँ। बहुव्रीही समास को मैं दो तरह से देखती हूँ। एक तो वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता, किसी एक व्यक्ति की ओर इंगित नहीं करता, वरन एक समुच्चय की ओर इंगित करता है। तो कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जो किसी एक खास व्यक्ति की ओर इंगित नहीं करते हैं बल्कि पूरे समुच्चय में से किसी भी एक के लिए लागू हो सकते हैं। जैसे यह शब्द है वारीवाह। वारीवाह अर्थात जो जल को ढो के ले जाता है वह, अर्थात बादल। तो ये शब्द तो हुआ बहुव्रीही समास, लेकिन इस शब्द में हमें पूरे बादलों के समुच्चय में से किसी एक बादल का बोध होता है। इसी प्रकार एक शब्द है जलोदर। अब तुमने देखा कि लंबोदर का अर्थ है जिसका विशाल पेट है, ऐसे श्री गणेश। वहाँ पर एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष गणेश जी के विषय में ही लंबोदर शब्द का प्रयोग हुआ है। हालांकि किसी भी विशाल पेट वाले व्यक्ति को लंबोदर कहा जा सकता है, और अगर लंबोदर शब्द किसी भी विशाल पेट वाले व्यक्ति के लिए उपयोग में लाया गया हो तब वह भी पूरे समुच्चय में से किसी भी एक का दर्शक बहुव्रीही होगा। लेकिन जब हम केवल गणेश जी के लिए उसका उपयोग करते हैं तो वह केवल एक व्यक्ति को दिखाता है। तो वारीवाह शब्द से हम देखते हैं कि यह किसी भी बादल के लिए यह शब्द उपयोग में लाया जा सकता है। अब लंबोदर और जलोदर दोनों शब्दों की तुलना करो। लंबोदर अर्थात वह गणेश जी जिनका विशाल पेट है, और जलोदर क्या है? जलोदर का अर्थ है ऐसा रोग, ऐसी बीमारी जिसके अंदर पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है और व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो देखा तुमने कि लंबोदर और जलोदर शब्दों में समानता कितनी है, और है दोनों ही बहुव्रीहि समास। लेकिन जलोदर शब्द रोग दर्शाता है, किसी भी व्यक्ति को यह रोग हो सकता है, जबकि लंबोदर एक खास श्री गणेश जी को ही दिखाता है। तो इसी प्रकार समुच्चय को दर्शाने वाले कुछ बहुव्रीहि समास के उदाहरण मैंने अलग निकाले। निपुत्री कहा, अर्थात वह व्यक्ति जिसकी कोई संतान न हो। उदारम मनः यस्य सः उदार मनाः, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो उदार मन वाला है उसके लिए हम उदार मना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हरि प्रसाद, अर्थात हरि के प्रसाद के रूप में जिसे पाया गया वह व्यक्ति, उसका नाम हरि प्रसाद। इसी प्रकार बहुव्रीहि समास का एक और शब्द है द्विरेफ। द्विरेफ का सामान्य अर्थ होगा दो बार र का आना, लेकिन द्विरेफ शब्द उस कीड़े के लिए कहा गया है जिसका दूसरा नाम है भ्रमर, अर्थात भंवरा। तो चूंकि भ्रमर शब्द में दो बार र आया है, इसलिए किसी कवि मन के व्यक्ति ने भ्रमर शब्द से अलग उस कीड़े का दूसरा नाम रख दिया द्विरेफ, अर्थात वह कीड़ा जिसके नाम में र अक्षर दो बार आया हो, ऐसा वह कीड़ा अर्थात भंवरा। तो देखा कि ये हुए कुछ भाषा के चमत्कार और अलंकार। इसी प्रकार हम कुछ और शब्दों को भी देखते हैं। हिम किरीटिनी, क्या है यह शब्द? हिम है जिसके किरीट के रूप में, किरीट अर्थात मुकुट, तो हिम अर्थात बर्फ, बर्फ है जिसके मुकुट के रूप में, तो यह भारत माता का वर्णन है हिम किरीटिनी। और तुम देखोगे कि श्री जयशंकर प्रसाद जी, जो हिंदी के बड़े साहित्यिक हैं, उन्होंने भारत माता के लिए हिम किरीटिनी शब्द का प्रयोग किया है। कुछ और शब्द हम देखते हैं। मेघनाद, इसका सामान्य अर्थ हुआ मेघों की गड़गड़ाहट, मेघों का नाद, बादलों की गड़गड़ाहट। लेकिन मेघनाद शब्द से हमें एक व्यक्ति का बोध होता है जो रावण का पुत्र था, और उसकी कहानी यूं है कि उसने जन्मतः, जो सारे बच्चे रोते हैं, लेकिन इसने जन्म के साथ साथ ही बादलों के गड़गड़ाने जैसी गर्जना की, तो इसका नाम पड़ा मेघनाद। इसी का दूसरा नाम पड़ा इंद्रजीत, क्योंकि यह ऐसा योद्धा था जिसने इंद्र को जीत लिया था। अब हम कुछ और शब्द देखते हैं। मैंने पहले भी दो शब्द बताए थे, गरुड़ ध्वज अर्थात विष्णु, कपिध्वज अर्थात अर्जुन। इसी प्रकार एक शब्द है आम्रध्वज। आम्रध्वज कहते हैं कामदेव को, क्योंकि उसकी ध्वजा के ऊपर आम की मंजरियों का चिन्ह होता है। कामदेव का ही दूसरा नाम है वसंत मित्रहा, क्योंकि वह वसंत ऋतु का सखा माना जाता है। इसी का तीसरा नाम है मनोज, क्योंकि वह मन से उत्पन्न हुआ है। तो देखा कि ऐसे बहुव्रीहि शब्द हमें साहित्य के एक बहुत ही विशाल विस्तीर्ण आयाम से परिचित कराते हैं, इसलिए इनको पढ़ना, इनको सीखना बहुत ही आनंददायक होता है। तो आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नमस्कार, तुम सुनते रहना रेडियो मधुबन और पढ़ते रहना संस्कृत।